यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य, वेदों में कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सश्नुरार्य ब्रह्माणुचुर नाम गृहन्ति एते। हे प्रभो, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवन नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी स्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा की गई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत का दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भवोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। ये श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय से और इस अध्याय का शीर्षक है गीता सार। अब गीता सार हमने भारत में बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसमें पता नहीं किसने लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। एक दृष्टिकोण से ये सही है, परंतु जब तक इसका विश्लेषण कर नहीं समझाया जाता तो लोग इसका गलत अर्थ लेते हैं। इसका गलत अर्थ ये लेते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो सब अच्छा है, और इसका जो परिणाम होगा वो तो अच्छा होना ही है, क्योंकि अब जो मैं कर रहा हूं अच्छा ही है तो परिणाम भी अच्छा होना है। और क्या तुम लाए थे, क्या ले जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो देना है यहीं देना है, तो इसका लोग अर्थ निकालते हैं कि इस संसार में जो कुछ भोग मिलता है भोग लो, क्योंकि इस संसार के बाद तो कोई संसार है नहीं जहां पर ले जाओगे ये भोग विलास। इसलिए चार्वाक मुनि ने क्या कह दिया, यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमन भवेत, कि जब तक ये जीवन है यावत जीवेत सुखम जीवेत सुख भोगो, और यही उद्देश्य होना चाहिए इस मनुष्य जीवन का, सुख भोगो, यावत जीवेत सुखम जीवेत। तो कोई व्यक्ति पूछे कि भाई सुख कैसे प्राप्त किया जाए, इतना आसान तो नहीं है, तो कहते हैं कि जो कुछ खाओ घी में पका खाओ, यह उनकी सुख की परिभाषा। घृतम पीबेत, कि जो कुछ खाना है सबसे पहले घी में पकाकर खाओ। अब क्योंकि चार्वाक मुनि वो एक पिछले युग का इंद्रिय भोगी था, इसलिए उसकी इंद्रिय भोग की परिभाषा कुछ हद तक ठीक है, यदि कोई मान भी लिए तो। आजकल यदि चार्वाक मुनि कलयुग में हुआ होता तो उसे वो श्लोक बदलना होता, क्योंकि आजकल शुद्ध घी तो उपलब्ध है ही नहीं, और घी में पका लोग पता नहीं जानते भी हैं कि नहीं कि घी में पका भोजन अच्छा होता है कि बुरा होता है। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि जब वो बांग्लादेश में वहां पर कुछ समय थे, तो एक दिन वहां पर वो भगवान का भोग बना रहे थे और पूरी तल रहे थे, तो घी में तल रहे थे पूरी। अब देखिए घी में तली पूरियां एक ऐश्वर्य माना गया है, कि कोई व्यक्ति पूरियों को घी में तल रहा है, और यदि आपको मैं अभी बताऊं कि आज के प्रसाद के लिए आपके लिए घी में तली हुई पूरियां इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म मिलेंगी, पता नहीं मिलेंगी कि नहीं, मतलब बोल रहा हूं मैं, तो मुंह में पानी आ जाएगा, पहले मन में पानी आएगा, मुंह में पानी आ जाएगा कि हां। परंतु जब भक्ति सिद्धांत पूरियां घी में तल रहे थे तो वहां के बांग्लादेश के जो पड़ोसी थे, भक्ति सिद्धांत जहां रह रहे थे वहां के पड़ोसी, वो आके नाक बंद कर खटखटाने लगे और चिल्लाने लगे कि क्या बदबू आ रही है यहां से, घी में तली हुई पूरियों की जो सुगंध होती है वो उनको बदबू लग रही थी, और वो स्वयं वहां के जो देश के वो लोग क्या खाते हैं, एक वहां का बहुत ही निकृष्ट रूपित एक आचार है जिसे वो कहते हैं नकिल। जय शशि गौर निताय की। और ये नकिल क्या है कि मान लो कोई गांव में कोई भी विभिन्न प्रकार के जीवात्मा कीटाणु और कोई भी जानवर छोटे मोटे कोई भी मरा है उसे एक बर्तन में डाल दिया, और उन मरे हुए जानवरों का अचार बना है, और वो उत्सव में वो लोग खाते हैं चाव से, उसे वो कहते हैं नकिल। तो उसके विषय में यदि उनको कहो तो उनके मुंह से पानी आ जाता है। और घी में तली हुई पूरियां नाक बंद करते हैं कि क्या दुर्गंध है। तो ये कलयुग का हाल है। तो चार्वाक मुनि ने, क्योंकि वो पिछले युग का एक इंद्रिय भोगी था, तो इसलिए उसने इस प्रकार से कहा कि इंद्रिय भोग भी करना है तो अच्छा भोजन घी में पका हुआ खाओ। तो कोई व्यक्ति पूछे, भाई घी तो बहुत महंगा है, घी आसानी से नहीं मिलता। तो कहता है कि या तो किसी से उधार में लो, और यदि कोई उधार में नहीं देता तो चोरी करो। नहीं, सबसे पहले तो वो कहता है कि भीख मांगो, कि भीख से यदि नहीं मिलता तो उधारी ले लो किसी से कि दे देंगे, कि उधारी दे दो अगले महीने चुकता कर देंगे, और यदि कोई उधारी भी नहीं दे रहा तो चोरी कर लो, फिर बेग बोरो और स्टील। भीख से, उधारी से या चोरी से किसी न किसी प्रकार से घी लाओ और घी में पका हुआ खाओ। तो कोई व्यक्ति ये पूछे, भाई यदि मैं उधारी लूंगा तो चुकता करना पड़ेगा, या चोरी करूंगा तो बुरा कर्म कर रहा हूं, तो फिर अगले जन्म में उसका मुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो कहता, अगला जन्म, ये अगला जन्म किसने देखा है? भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमन भवेत, कि ये जो शरीर है जो 5 तत्वों का बना हुआ है ये भस्म बनने वाला है, मृत्यु के समय जब जलाया जाएगा तो ये शरीर भस्म बन जाएगा और ये भूमि में मिल जाएगा। तो जिससे चोरी की, जिससे उधारी ली, क्या वो भीम भूमि में जाके ढूंढेगा तुमको? तुम्हारी राख से पूछेगा, भस्म से पूछेगा कि घी लाओ? तो क्योंकि आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं, तो केवल शरीर जो है उसके लिए जीवन यापन करते रहो। तो हम देखते हैं कि वास्तविक गीता का सार यहां भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ कर रहे हैं आत्मज्ञान से इस अध्याय में, कि सबसे पहले यह समझ लेना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और ये हमने कई बार सुना होगा कि जब हरे कृष्ण आंदोलन के प्रवचन में आते हैं तो ये प्रभु जी लोग खाली यही कहते रहते हैं, शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, ठोक ठोक के पता नहीं कितनी बार कह दिया मुझे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी पहली बार जब अमेरिका में प्रचार शुरू किया और उन अमेरिकों को हिप्पियों को जब प्रभुपाद जी कहते थे कि शरीर नहीं आत्मा है, तो उनको लगा प्रभुपाद जी अपने बारे में कह रहे हैं, रूपा जी ने कहा हम शरीर नहीं आत्मा है। हाँ आप शरीर नहीं आत्मा है। और फिर प्रभुपाद जी ने उसको क्लैरिफाई किया, नहीं हम सब सारे जीवात्मा, हम सब शरीर नहीं आत्मा है। क्योंकि ये शरीर से आसक्ति इतनी है हमारी, इतनी आसक्ति है कि चाहे इतनी बार सुना हो परंतु तुरंत जैसे ही ये सारे वेग जो हैं हमारे शरीर के अंदर, रूप गोस्वामी कहते हैं इसके विषय में उपदेशामृत में, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये छह वेग हैं हमारे शरीर के, जैसे ही ये वेग डिमांड करते हैं, जिह्वा कहती है कि कुछ बोलो, बहुत देर से चुप हो, कुछ बड़बड़ करो, तो तुरंत कुछ गाना शुरू कर देता है व्यक्ति। और यदि कुछ बड़बड़ करने के लिए नहीं है तो जिह्वा कहती है अब कुछ अंदर डालो इसके, तो या तो ये जिह्वा कुछ बाहर फेंकती है शब्दों के रूप में, या ये जिह्वा कुछ अंदर लेती है खाने के रूप में। तो ये जिह्वा का वेग हर समय, मन का वेग हर समय, मन यही कहता रहता है कि मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं सोचूंगा, और यदि मेरे सारी इच्छाओं में मैंने जो चुनाव किया है ये एक इच्छा का अभी इस क्षण, तो मन शरीर को कहता है, वेग इतना तीव्र है इस मन का कि शरीर को कहता है तुरंत जाकर इस इच्छा को अभी पूरा करो। जैसे कोई व्यक्ति जब होटल में जाता है तो इतना लंबा मेनू कार्ड होता है वहां पर, आजकल तो पुस्तिका होती है छोटी सी अलग अलग प्रकार के, तो मन वहां पर देख रहा है सारी इच्छाएं, सब कुछ खाने की इच्छा है, वो जो मेनू कार्ड में देखता है हर कुछ अच्छा लगता है मन को, परंतु बुद्धि बीच बीच में आके कहती रहती है मेरे पॉकेट को अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर उसमें से, और फिर मन ये भी जानता है, मन ये भी जानता है कि यदि मैं ये सब खाने जाऊं तो मेरा पेट का कैपेसिटी इतना ही है, कितना खाऊंगा मैं, तो फिर उसमें से स्कैनिंग करता है मन कि इसमें से सबसे जो अच्छा है खाद्य पदार्थ उसको मैं ऑर्डर करूं। तो इस क्षण के लिए कहता है ये तो मैंने कल खाया था, वो परसों खाया था, वो पिछले हफ्ते भी खाया था, बहुत दिन से ये खाया नहीं अब तक। हाँ वेटर को कहता है इधर आओ ये लेके आओ। तो उसी प्रकार से जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मन देखिए कैसे वो मेनू कार्ड को स्कैन कर एक चुनाव करता है, हालांकि वो सब कुछ भोग करना चाहता है परंतु उसके अंदर भोग त्याग चलता है, इंद्रिय भोग के अंदर भोग त्याग कि इसे त्यागो और इसे भोगो इसे त्यागोगे तो ये भोग अच्छी से भोग पाओगे। तो उसी प्रकार से ये मन जो है इसका वेग कैसा है कि इस संसार में कितने ऐसे इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं, और ये सारी जो वस्तुएं हैं इंद्रिय भोग की, मन हर समय वो मेनू कार्ड की तरह स्कैन करता रहता है, इसे अभी भोगूं कि बाद में, जैसे वो रेस्टोरेंट में इसे अभी लूं कि बाद में। तो उस प्रकार से वो हर समय यही देखता रहता है, और मन देखिए मन को कोई देख नहीं सकता, परंतु मन ये आंखों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा सब कुछ देख रहा है, परंतु कोई किसी व्यक्ति के मन को नहीं देख सकता, और हम भी अपने मन को नहीं देख पा रहे हैं कि ये मन अभी क्या सोच रहा है, क्योंकि इतना ये मन शरीर से एक प्रकार से एकात्म हो गया है, कि पता नहीं लगता है कि मैं कौन हूं या मेरा मन कौन है या मेरी बुद्धि कौन है या शरीर क्या है, इंद्रिय क्या, सब एक ही मैं। अब मैं में आत्मा, मन, बुद्धि, ये सब आप कंफ्यूज मत कीजिए आपकी गीता कोर्स के द्वारा। लोग कहते हैं अभी मैं अपना सुख शांति का जीवन जी रहा हूं, मैं मतलब मैं, ये दिखता जो है शरीर, फोटो लाऊं, इसमें आप कहते हैं कि नहीं मैं कौन हूं ये बताओ, वो मैं शरीर हूं कि मैं मन हूं कि मैं इंद्रिय हूं कि मैं आत्मा हूं। अरे भाई हम तो खाली आत्मा, ये आत्मा बस, कई लोग खाली वो प्रेतात्मा भूतात्मा यही जानते हैं। इसे मैं बता रहा था कि एक व्यक्ति, उसने जब हमारे इस्कॉन के आत्मा सीरियल के विषय में पढ़ा पेपर में, तो ये व्यक्ति ये भूत प्रेत की पिक्चरें बहुत देखता था, इसको भूत प्रेत की पिक्चरें इतनी अच्छी लगती थी, तो उसने देखा पेपर में आत्मा सीरियल स्टार प्लस, तो उसे लगा ये कुछ भूत प्रेत का सीरियल हो सकता है आत्मा। जैसे कई बार ये भूत प्रेत के जो पिक्चरें होती हैं, सीरियल होते हैं, उनके भी नाम ऐसे होते हैं, भटकती आत्मा। खूनी प्रेतात्मा, इस प्रकार से नाम होते हैं इनके। तो इसने जब देखा आत्मा, तो इसे लगा ये कोई नया भूत प्रेत का सीरियल शुरू हुआ लगता है, तो तुरंत गया देखने के लिए। तो देखने अब वो भी सुबह के समय, बोले ये भूत प्रेत का सीरियल तो रात को आना चाहिए, सुबह 8 बजे कहां से आ रहा है ये। उसे लगा आजकल टीवी में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो चालू जब किया उसने तो देखा कि हमारे हरे कृष्णा के भक्त वो गेरुआ वस्त्र धारण किए, पूरा मुंडन तिलक और कंठी माला, तो हो सकता है कि उनको देखकर थोड़ा डर गया होगा, कुछ अलग ही है ये आत्मा कुछ अलग ही लग रहे हैं। परंतु जब उसने सुना, देखा कि पहले तो समझ में नहीं आई कि ये भूत प्रेत के सीरियल में ये कौन है, ये कौन से जीवात्मा है, परंतु जब सुना तो धीरे धीरे उस व्यक्ति को पता लग गया कि भाई मैं जो जीवन जी रहा हूं, देखिए श्रवण और वो जो संग उसने किया उतना, तो धीरे धीरे उसके मन में ये चेतना जागृत होने लगी कि वास्तविक रूप में ये जो व्यक्ति कह रहा है ये मेरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और वो व्यक्ति उस आत्मा सीरियल को देख देख कर भक्त बन गया, और 16 माला कर रहा है। तो ये जो ज्ञान है, सबसे पहला ज्ञान कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये वास्तविक रूप में सबसे गुह्य ज्ञान है। यदि इसे हम समझ लें, इसका साक्षात्कार हम कर लें, जब तक इसका साक्षात्कार नहीं होता तब तक हालांकि हम प्रवचन में आकर बैठकर सुनेंगे शरीर नहीं आत्मा, आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं, और दूसरों को भी सुनाएंगे देखो तुम ये शरीर नहीं हो और इंद्रिय भोग में मत लगना, परंतु जैसे ही हमारे सामने इंद्रिय भोग आ जाता है तो प्रवचन तो उसके लिए था, वो नया नया आया है ना, मैं तो अब काफी टाइम हो गया तो मुझे पता है कि कैसे इसको भगवान की सेवा में मैं यूज कर सकता हूं, युक्त वैराग्य। परंतु उसमें खाली युक्त रहता, वैराग्य पता नहीं रहता है कि नहीं। तो जैसे ही एक छोटी सी कथा है कि कैसे हम जब तक आत्म साक्षात्कार में नहीं आते तब तक आध्यात्मिक प्रगति होना तो दूर की बात है। कृष्ण प्रेम वो तो सब छोड़ ही दो, गोलोक वृंदावन जाना पता नहीं हो तो कब होगा फिर। तो एक जंगल में कुछ चिड़ियां रहा करती थी और ये चिड़िया परेशान थी क्योंकि एक शिकारी आकर इन चिड़ियों को पकड़ पकड़ कर ले जाकर बेचा करता था। तो ये चिड़िया इन्होंने इष्टा गोष्ठी की, एक साथ सब आकर ये चर्चा कर रही थी कैसे इस शिकारी से बचा जाए। तो सभी कह रहे थे ये शिकारी किस प्रकार से हमको पकड़ता है, कभी ये जाल बिछाता है और इस प्रकार से जाल बिछाता है और उसके अंदर कुछ दाना डालता है कि हम वो दाने से इतने ज्यादा लालायित हो जाते हैं कि पता नहीं लगता कि उस दाने के साथ जाल भी है। तो कैसे हम बचें, हमारा जो समुदाय है चिड़ियों का समुदाय कम होते जा रहा है तो हमारे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा यदि हम कम होते जाएंगे। तो वंश परंपरा को चलना चाहिए। तो ऐसे वो चर्चा कर रहे हैं तो एक चिड़िया ने कहा उस मीटिंग में कि मैंने कल देखा है कि एक साधु इस जंगल में रह रहा है तो कुछ तपस्या कर रहा है, तो हम चलते हैं उस साधु के पास और उस साधु को जाकर हम अपनी समस्या कहते हैं। तो हो सकता है कि वो साधु उसके पास कुछ, ये साधु जो होते हैं इनके पास कोई बहुत जादुई मंत्र वगैरह होता है, तो हो सकता है ये साधु कुछ जादुई मंत्र दे दे जिसके कारण हम इस समस्या का हल ढूंढ पाए। तो सभी गए वो साधु के पास और रिपोर्ट किया अपनी समस्या का। तो साधु ने कहा ठीक है, तुमने मुझे सब बता दिया कि ये शिकारी कैसे तुम्हें पकड़ता है, तो मैं तुम्हें ये मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करो। तो मंत्र क्या दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना मत। तो ये मंत्र दे दिया तो सबको कहा अब मेरे पीछे बोलो। तो सभी चिड़ियां बोलने लगी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना मत। तो ये वो शिकारी क्या करता था, पहले आता था जाल बिछाता था और उसमें दाना डालता था और ये लोग दाना को देख के जाल भूल जाते थे और लोभ में उसमें फंस जाते थे। तो साधु ने कहा मंत्र याद हुआ, पूरा याद हुआ, अब कंठस्थ कर लो इसको और रोज सोला माला करना इसका। तो कंठस्थ कर लिया, अब कंठस्थ कर सभी बैठ गए एक साथ सुबह मंगल आरती के बाद और सभी शुरू किए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना मत। और कोई भी चिड़िया यदि जब करते समय सोती तो दूसरी चिड़िया उठाती थी, उठो। पूरा सोला माला करना है रोज, तो पूरा सोला माला रोज इस मंत्र का जप वो लोग कर रहे थे। और हुआ ऐसा कि एक हफ्ता बीता और सब एकदम अब पक्का हो गए इस मंत्र जाप में। और एक हफ्ते पश्चात कौन आया, शिकारी आया फिर से। तो जैसे ही शिकारी आया तो अब इनका संकीर्तन जोर से बढ़ गया और माइक लगाओ, जोर से गाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ और जोर जोर से ये मंत्र शुरू किए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना मत, शिकारी आ गया। और जैसे शिकारी ने सुना, इनको कैसे पता लगा कि मैं ये सब कुछ करने वाला हूं। परंतु शिकारी ने सोचा कि ठीक है, ये चिड़िया है, इनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं, हो सकता है कि कहीं से पता लग गया हो कि मैं जाल बिछाता हूं, ये सब करता हूं, परंतु मैं जानता हूं कि इनको कैसे पकड़ना है। तो ये लोग अब जोर जोर से जप कर रहे हैं, शिकारी आ गया, शिकारी आ गया। और शिकारी ने अपना जाल बिछाया, जाल बिछा दिया, जाल बिछा दिया, सभी एक साथ। साधु ने सही मंत्र दिया, सब कुछ अभी सामने दिख रहा है। और फिर दाना डाल दिया शिकारी ने, दाना भी डाल दिया। सारी चिड़िया एक दूसरे को देखकर कहती है, देखो वो चिड़िया जिसने सुझाव दिया था, मैं कहा ना ये साधु जादुई होते हैं, जो मंत्र दिया बराबर वही हो रहा है, जाल बिछा रहा है, इसने दाना डाला उसके अंदर। परंतु जैसे ही बाकी चिड़ियों ने दाने को देखा तो फिर चौथा लाइन भूल गए, और चौथा लाइन क्या था, लोभ से इसमें फंसना मत। दाने को देखा, चौथा लाइन मंत्र का भूल गए, इतना सोला माला किया इतने समय तक, वो चौथा लाइन भूल गए, तुरंत कूद पड़ी वो दाना खाने के लिए, सामने दाना है अब तो बस उसको खाना है। और जैसे ही कूदी वो दाना खाने के लिए, तब फिर शिकारी ने जाल बांध लिया और सारी चिड़िया वापस उसके अंदर फंस गई। और तब फिर उनको चौथी लाइन याद आई फंसने के बाद, अरे वो भूल गए हम तो, वो चौथी लाइन क्या थी, लोभ से इसमें फंसना मत, और हम फंस गई। तो अब शिकारी अपने कंधे पर वो जाल में सारी चिड़ियों को ले जा रहा है बेचने के लिए, तो अब जाल में फंसी हुई एक दूसरे को क्या मंत्र कहती हैं, शिकारी आया था, जाल बिछाया था, दाना भी डाला था, और हम लोभ से फंस गई। तो उसी प्रकार से हम महामंत्र के विषय में सुनते हैं, और ये जो दिव्य ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इसके विषय में भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। परंतु जैसे ही वो दाना आ जाता है सामने, तो जो चौथी लाइन है, जो उसका निष्कर्ष है, वो भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो मन का वेग है, वो उसी प्रकार से है कि सब कुछ पता है मन को, क्या सही है क्या गलत है सब पता है मन को। कोई इस संसार में इतना अज्ञानी नहीं जिसको पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है और मुझे गलत पथ पर नरक में ले जा रहा है ये मेरा कार्य, मेरे कर्म, सब जानते हैं। परंतु जैसे ही सामने विषय वस्तु आ जाती है तो सारे मंत्र भूल जाते हैं। तो ये जो हमारे मन के वेग हैं, तो रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है, वाचो वेगम मनस वेगम क्रोध वेगम, वेग है इस प्रकार का वेग है कि जैसे जैसे बंबई में जो लोकल ट्रेन में अंदर जब घुसते हैं लोग, उसे वेग कहते हैं, वेग से अंदर घुसते हैं, वेग से बाहर आते हैं, तो इतना वेग होता है कि आप चाहे आपको बाहर निकलना ना हो, परंतु वो आपको निकालेंगे बाहर। आप खड़े हैं और आपको निकलना नहीं बाहर, तो लोग खड़ा क्यों है यहां पे फिर, तो वेग से आपको बाहर निकालेंगे और कई बार तो आपको ऊपर चढ़ने भी नहीं देंगे, क्योंकि गलती क्यों की सामने खड़े होने की हमारे। और जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये सारे जो वेग हैं, ये वेग जैसे ही उत्पन्न होते हैं तुरंत ये वेग जो है मन को रिपोर्ट करते हैं। भूख का वेग तुरंत मन को रिपोर्ट करता है, प्यास का वेग मन को रिपोर्ट करता है। तो ये सारे जो वेग हैं हमारे अंदर मन को रिपोर्ट करते, तुरंत कुछ ना कुछ ढूंढो। तो मन जो है वो सुपरवाइजर है सारे इंद्रियों का, तो मन फिर ठीक है हाथ को बोलता है, चरणों को अपने हमारे पैरों को बोलता है, चलो यहां चलो, ये भूख लगी है, चलो पैर लेके चलो शरीर को यहां पर। तो वेग इतना है कि भागता है, फिर ये पैर भाग रहा है, ये पैर नहीं भाग रहा, मन भगा रहा है इस पैर को। आंखों को मन कहता है देखो वहां पर देखते रहो, टीवी की तरफ देखते रहो। तो देखो कई बार ये व्यक्ति ने अनुभव किया होगा कि जब ये सारी इंद्रियां विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं तो वह अपने बस में नहीं रहती इंद्रियां। कई बार भक्तों को भी देखा है कि टीवी चल रहा है और पता है टीवी नहीं देखना है, फिर भी धीरे धीरे थोड़ा एक एक बार देखते रहेंगे क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो मन है इसने आंखों को इस प्रकार से ट्यून करके रखा है कि उधर देखना ही है, हर दो क्षण में देखते रहो और कुछ उसमें सांत्वना तसल्ली कुछ नहीं मिलेगी, कुछ फालतू चीज चल रही होगी परंतु फिर भी एक तसल्ली होगी कि देख लिया कि अच्छा नहीं है। और यदि अच्छा निकल जाए तो फिर तो माला साइड में रखो भाई, अब तो जाओ वहां पर देखो। तो ये जो आत्मज्ञान है इसके विषय में भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है और जिसे अध्ययन करने से ये समझ में नहीं आ रहा कि वास्तविक निष्कर्ष क्या है वेदों का, तो वो व्यक्ति केवल इन वेदों को इंद्रिय भोग के लिए ही उपयोग में ला रहा है, वो आध्यात्मिक स्तर पर है ही नहीं व्यक्ति जिसने निष्कर्ष नहीं जाना है। जैसे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर तरीके से इसे समझाया है कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि आप एक वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हो मार्केट में, तो जब आप एक वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हो तो वॉशिंग मशीन के साथ क्या लेते हो, एक मैनुअल मिलता है, मैनुअल को कहते हैं नियम पत्रिका, नियम पुस्तिका। तो जो ये मैनुअल जो है वो वॉशिंग मशीन को समझाती है कि वॉशिंग मशीन में क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। कितने लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी है, तो मतलब इस्तेमाल भी की होगी। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को जिसने पहली बार जब वॉशिंग मशीन देखी उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, तो उसको लगा कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक बाल्टी है, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड बाल्टी है। तो जैसे बाल्टी में हम कपड़े धोते हैं ऊपर नीचे ऐसे कर, वैसे वो उसमें धोने लगा, क्योंकि पता नहीं कि वॉशिंग मशीन है और इसमें क्या क्या उपकरण है जिससे यूज कर सकते हैं। तो जो मैनुअल होता है वो समझाता है, मैनुअल में क्या क्या होता है, एक वॉशिंग मशीन के मैनुअल में क्या क्या आप पाएंगे, क्या क्या पाएंगे, इसको ऑपरेट कैसे करना है, इस्तेमाल करने के नियम, डायरेक्शन फॉर यूज, और क्या आप पाएंगे उसके अंदर, हाँ चेतावनी, कॉशन, चेतावनी होती है कि इस प्रकार से यहां पर हाथ मत डालना और वहां पर वो दो रेड क्रॉस लगाया रहता है वहां पे कि यहां पर अपना उंगली मत डालना या ये मशीन को उल्टा मत कर देना, जो भी कुछ, तो चेतावनी होती है, सावधानी बताई जाती है और एक गारंटी दी जाती है ये मशीन इतना चलेगा। उसी प्रकार से ये जो हमारा मशीन है ये शरीर, इसको भी भगवान ने मशीन कहा है गीता में, यंत्र रूढ़ानी मायाया, यंत्र है ये, मशीन है और इसका मैनुअल है ये गीता, इस मशीन का मैनुअल है ये भगवद गीता। तो जैसे हर वस्तु की एक गारंटी होती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और डेट ऑफ एक्सपायरी, वैसे ही हमारा डेट ऑफ मैन्युफैक्चर तो सब जानते हैं, ये शरीर का मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारा बर्थडे, परंतु हमारे कर्मों के अनुसार प्रकृति ने डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिख दिया है, हमको बताया नहीं अभी तक, परंतु लिख दिया है कि डेट ऑफ एक्सपायरी ये, और वो कभी भी हो सकता है वो डेट ऑफ एक्सपायरी। और जैसे कई बार आप कुछ दवाई वगैरह खरीदो, टॉनिक खरीदो, तो उसमें लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, कि 6 महीने में यदि आप इसको लोगे तो सबसे ज्यादा असरदार होगा ये टॉनिक या ये दवाई। तो उसी प्रकार से मनुष्य शरीर के बारे में कहा गया है, प्रहलाद महाराज ने कह दिया है 5 वर्ष की उम्र से शुरू कर दो इसको यूज करना आध्यात्मिक जीवन के लिए, बेस्ट दैट टाइम टू यूज, उस समय सबसे अच्छा है। परंतु हम जब एक्सपायरी डेट का 1 दिन बाकी है तब बॉटल को खोलते हैं, तब मनुष्य जीवन के विषय में, अरे बाप रे आध्यात्मिक कुछ किया ही नहीं मैंने इस संसार में, तो 1 दिन बचा है अब उस दवाई को एक्सपायर होने के लिए, तब जाकर कहते हैं कि भगवान आपके लिए। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, या कोई व्यक्ति किसी को एक फूल अर्पित करता है, एक व्यक्ति अपने प्रियतमा को फूल अर्पित करता है, तो देखता है कि कौन सा अच्छा फूल, गुलाब का जो खिला हुआ है जिसमें सुगंध है, वो चुनाव करता है और वो ला कर देता है, ये मेरे तरफ से। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा फूल चुन रहा है जो पूरा सड़ गया है, उसकी पत्तियां झड़ रही हैं, बदबू आ रही है उसके अंदर से, वो फूल ले लाता है और कहता है ये तुम्हारे बर्थडे के लिए प्रेजेंट, सारी पत्तियां झड़ रही हैं, सड़ा हुआ फूल। तो ये शरीर की तुलना यदि उस फूल से करें, तो जब तक फूल वो पूर्ण प्रकार से खिला हुआ था, सुगंध थी उसके अंदर, तब तक हम सूंघते रहे इसको, और जब पत्तियां झड़ने लगी, सड़ने लगा फूल, बदबू आने लगी, तब फिर भगवान आपके लिए। ये शरीर में सारे रोग उत्पन्न हो गए, उसके पश्चात अब भाई इंद्रिय भोग तो वैसे भी शरीर नहीं कर पाएगा। तो जैसे कई बार लोग मंदिरों में डोनेशन बॉक्स में कौन सा नोट निकालते हैं अपने पर्स से, जो बाहर कोई दुकानदार लेने नहीं वाला, सबसे फटा हुआ, मतलब दिख भी नहीं रहा कि उसके अंदर 1 लिखा है, 10 लिखा है, 100 लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं, और कैसे तो उसको टेप से यहां वहां चिपकाया हुआ है, उसको निकाल के आपके लिए भगवान, आपको क्या कमी है नोटों की, आप तो रिजर्व बैंक है, इसे रिजर्व बैंक में सारे फटे हुए नोट दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो साक्षात्कार है, जैसे वॉशिंग मशीन के विषय में हमने चर्चा की, तो शास्त्रों में कहा गया है कि 4 चीजें किसी भी सृष्टि के लिए आवश्यक है। जैसे कि ये मंदिर बनाया है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई मंदिर ऐसा बनाने के लिए या किसी का घर बनाने के लिए क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता है, कोई भी सृष्टि करने के लिए, फॉर एनी टाइप ऑफ क्रिएशन, क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता है? हाँ कहिए। हाँ, उसका डिजाइन होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, पैसा भी होना चाहिए, नहीं तो डिजाइन खाली, अच्छा डिजाइन है, मेरा घर देखो कितना अच्छा है, डिजाइन खाली पेपर पे है लेकिन अभी तक, और पैसा होना चाहिए, और बनाने वाले होने चाहिए, लेबर होना चाहिए, वर्कर होने चाहिए, और तो देखिए सही कहा आप लोगों ने। तो संस्कृत में इन 4 चीजों को कहा गया है, सबसे पहले स्वरूपेण प्रधान, स्वरूपेण प्रधान होता है डिजाइन, नक्शा, ब्लूप्रिंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो सबसे पहले नक्शा होना चाहिए कि ठीक है इस प्रकार से कुछ बनाना है, और उसके अनुसार फिर दूसरा है उपादान। पहले तो स्वरूपेण प्रधान, फिर उपादान। उपादान का अर्थ है उपकरण, जैसे कितना सीमेंट, कितनी ईंट, कितनी रेती, उसको बनाने के लिए इसे कहते हैं उपादान, या फिर उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो वो भी कह सकते हैं। और तीसरा है निमित्त यावन। निमित्त यावन कहते हैं कि जो निमित्त बनेंगे इन सब को इस नक्शे के अनुसार बनाने के लिए, तो जो वर्कर काम करेंगे ये ईंट जो रेती है उन सब को इस प्रकार का एक हॉल बनाने के लिए। परंतु ये तीन भी यदि हुए, इन सब से ज्यादा जरूरी है चौथा, और उसे कहा है अर्थ विशेष। अर्थ विशेष का अर्थ है कि किस लिए इसका उपयोग किया जाएगा, क्यों बनाने वाले हैं, कारण क्या है बनाने का, वो सबसे प्रमुख है। अब आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि नक्शा बना दिया या स्वरूपेण प्रधान हो गया और उपादान और निमित्त यावन सब कुछ होने के बाद फिर सोच रहे हैं अरे ये बनाया क्यों हमने। मान लो ये हॉल बनाया, उसके बाद में जिसने बनाया सब आकर इकट्ठा होकर हॉल में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, क्यों बनाया भाई हॉल ये, कैसा लगेगा आपको। अर्थ विशेष वो सबसे पहले होना चाहिए कि कोई भी चीज की सृष्टि है उसके पीछे अर्थ क्या है, पर्पज क्या है। अब जैसे देखिए ये जो है क्लिप है, इसके पीछे जिसने इसका निर्माण किया है तो सब कुछ गया इसके पीछे, स्वरूपेण प्रधान, उपादान, निमित्त यावन, और उससे सब तीनों से पहले अर्थ विशेष कि ये क्लिप इस प्रकार से यूज आएगा। अब ये क्लिप का और भी यूज आ सकता है, ये जब बहुत ज्यादा बोलता है तो इसके मुंह पे मार दो, इसका भी यूज हो सकता है। परंतु ये क्लिप को उसके लिए नहीं बनाया गया। यूज कर सकते हैं आप लोग, यदि देखें कि टाइम के ऊपर जा रहा है, लाओ थोड़ा क्लिप लाओ इसके मुंह पे मारे, बंद करो इसका मुंह। परंतु ये क्लिप को बनाने के पीछे उनका एक पर्पस था, कपड़े भी सुखा सकते हैं आप इसे। तो परंतु उसी प्रकार से देखिए ये जो संसार बना है, ये जो सृष्टि बनाई है भगवान ने, इसके पीछे भी अर्थ विशेष है। परंतु जैसे कोई व्यक्ति इस क्लिप का गलत उपयोग भी कर सकता है, वैसे ही हम इस सृष्टि का, जिसके लिए बनाई गई है सृष्टि, उसका गलत उपयोग भी हम कर सकते हैं और कितने कर रहे हैं। कि भगवान ने यह सृष्टि बनाई ताकि हम यहां पर फ्रस्ट्रेट होकर भगवत धाम जाएं, ये अर्थ विशेष इस सृष्टि बनाने का। इस सृष्टि बनाई ताकि हमें यह साक्षात्कार हो जाए कि यह सृष्टि हमारे रहने लायक नहीं है, हमारे रहने के लिए नहीं बनाई। परंतु सभी भौतिकतावादी व्यक्ति जो है, समाज है भौतिकतावादी समाज, वो एकजुट होकर ये पूरा जो अर्थ विशेष है इस सृष्टि का उसको बदलना चाहते हैं, कि इस दुखालय को सुखालय बनाना चाहते हैं, कि कैसे तो हम इसका जो पूरी सृष्टि बनाई है इसका जो अर्थ विशेष है उसे पलट दें हम। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वैदिक शास्त्र उसका निष्कर्ष क्या है, अर्थ विशेष क्या है। नहीं तो जैसे एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद जी को कहता है कि मैंने जान लिया है कि सर्वोच्च ग्रंथ है भगवद गीता। तो प्रभुपाद जी ने देखा भाई अच्छी बातें कह रहे हैं, भगवद गीता को इसने सर्वोच्च माना है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि भगवद गीता में क्या आपको इतना अच्छा लगा। अब देखिए इसका निष्कर्ष देखिए, भगवद गीता का क्या निकालता है, ये कहता है पूरी भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई और पूरी भगवद गीता सुनाने के बाद भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, यथेच्छसि तथा कुरो, जो तुम्हारी इच्छा करो। तो इसलिए मुझे ये आध्यात्मिक ग्रंथ आपका ये भगवद गीता बहुत अच्छा लगा है कि सब कुछ जान लेने के बाद आपके भगवान क्या कहते हैं, जो करना है करो। देखो ये वो निष्कर्ष निकाल रहा है, मतलब जो इंद्रिय भोग करना है, जो गलत काम करना है करते रहो, ज्ञान हो गया ना, ज्ञान के साथ करो। अब एक व्यक्ति तो कह रहा था, कहां आपके भगवद गीता में भगवान कहते हैं चाय नहीं पीना, श्लोक दिखाओ मुझे। कहां आपके भगवद गीता में भगवान कहते हैं टीवी नहीं देखना है, श्लोक है, भगवान आपके कृष्ण ने नहीं कहा, तो आप क्यों कह रहे हैं? चाय के विषय में तो उसने कहा कि मैं आपको श्लोक दिखाता हूं जहां भगवान कहते हैं चाय पियो। मतलब वाह, तो थोड़ा बताओ भाई कौन सा श्लोक है। तो उसने श्लोक निकाला, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम रिधि सन्निविष्टो, और वो उसका विच्छेद करके बता रहा है संस्कृत का, सर्वस्य का अर्थ है भगवान कह रहे हैं सर्वस्य, सभी चाह, सभी चाय पियो। और इतना ही नहीं, भगवान ने केवल इतना ही नहीं कहा, सर्वस्य चाह अहम, मैं भी पीता हूं, सन्निविष्टो, जो स्टोव पे बनी हुई चाय वो चाय पियो। जैसे एक संस्कृत का श्लोक है, यदि उस, अभी संस्कृत भाषा ऐसी है कि संस्कृत भाषा को कोई व्यक्ति तोड़ मरोड़ के कितने अलग अलग अर्थ निकाल सकता है उसमें से। जैसे कोई भी भाषा में से आप इस प्रकार के अर्थ निकाल सकते हैं, जैसे हिंदी भाषा में भी मैं बता रहा था कि हमारे एक भक्त, वो यहां से है तमिलनाडु से, हमारे मंदिर में रहते हैं, तो हिंदी इतने ठीक से जानते नहीं। तो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था कुछ सालों पहले, तो वहां पर चर्चगेट में स्टॉल लगाया था और वहां पर हम छोटी छोटी किताबें दे रहे थे प्रभुपाद की लिखित, 10-10 रुपए में। तो हमारे भक्त मराठी में अनाउंस कर रहे थे, किताबों को ऊपर उठाकर अनाउंस कर रहे थे, फक्त 10 रुपया कि ये सारी किताबें केवल 10 रुपए में आपको मिल रही। तो ये जो भक्त, अब इनका टर्न आया कि वो बुक टेबल को संभालें, तो वो अकेले थे, तो अब उन्होंने सोचा कि मैं भी अनाउंस करता हूं, तो ये तो केवल एक लाइन है, वो याद कर लूंगा, कंठस्थ कर लूंगा एक लाइन, और मराठी में बोलता हूं ताकि, ज्यादा मराठी थे वहां के लोग, तो अब उनको हिंदी भी नहीं आती तो मराठी कहां से आएगी, तो साउथ इंडियन है वो, तो याद कर लिया कि बाकी भक्त जो क्या कह रहे थे। तो किताब उठाई उन्होंने और कहते हैं फक्त 10 रुपया। तो अब पहले जो भक्त वो उठा के कह रहे थे फक्त 10 रुपया, तो एक दो लोग आकर देखते थे, खरीद के जाते थे, अब सभी देख रहे हैं उसको, और जो भी उधर से गुजर रहा था, और इनको कुछ ज्ञान है, बस बोल रहे हैं फक्त 10 रुपया, फक्त 10 रुपया, और इन्हें लगा भाई मेरे बोलने की वजह से कितने लोग आ रहे हैं लेने के लिए। तो देखिए भाषा जो है वो भाषा इस प्रकार से है कि यदि हमें ठीक से उसका ज्ञान नहीं, यहां तक कि यदि उसका कॉमा या फुल स्टॉप अगर बदल दें तो मतलब बदल जाएगा उसका, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अर्थ बदल गया उसका। तो वैसे ही संस्कृत भाषा भी ऐसे श्लोक का तोड़ मरोड़ कर, तो एक श्लोक है जिसमें कहा गया है केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडव हर्ष निर्भर कौरवस्त रुदंतस्ति हा हा केशव केशव। ये बहुत सिंपल संस्कृत है, इसमें कहा गया है केशवम, भगवान श्री कृष्ण को केशव भी कहते हैं। पतितम का अर्थ है गिरा हुआ, तो केशवम पतितम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ है देखना, तो केशव को गिरा हुआ देखकर पांडव हर्ष निर्भर, पांडव बहुत हर्षित हो गए केशव को नीचे गिरा हुआ देखकर। कौरवस्त रुदंतस्ति, कौरव रुदंतस्ति और कह रहे हैं हा हा केशव केशव। समझ गए कि केशव को गिरा हुआ देखकर पांडव हर्षित हुए और कौरव रोने लगे, परंतु यह बिल्कुल अर्थ नहीं है श्लोक का। श्लोक का अर्थ यदि संस्कृत विच्छेद हो तो समझ में आएगा। केशव का विच्छेद करें, कह शव, कह एक सरोवर को कहते हैं या नदी को कहते हैं, और शव जानते हैं आप लोग, मृत शरीर को शव भी कहते हैं। तो एक नदी में शव बह रहा था, केशव, कह शव, एक नदी में शव बह रहा था, और पांडव मछलियों को भी कहते हैं संस्कृत में। तो उस नदी की जो मछलियां हैं, जब उस शव को देखा तो हर्ष निर्भर कि हमारा आज लंच आ गया, तो वो मछलियां हर्ष निर्भर। और संस्कृत में कौरव कौवे को भी कहते हैं, परंतु जब कौवे ने पेड़ पर देखा कि यह शव बहता चला जा रहा है, रुदंतस्ति कौरव रुदंतस्ति हा हा केशव केशव, वो रो रो के ये कह रहा है कि अरे ये शव चला जा रहा है, मैं नहीं खा पाऊंगा इसे। ये इसका अर्थ है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब भक्त ये जो परपोर्ट्स दिए, भक्ति वेदांत परपोर्ट्स, तो इसमें देखिए कई बार ऐसे श्लोक हैं जिसमें भगवान कह रहे हैं ध्यान योग के विषय में, अष्टांग योग के विषय में, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र उपाय है। तो लोग कई बार ये आश्चर्य करते हैं कि भाई यहां पर कृष्ण अनुवाद में कुछ और कह रहे हैं और आपके प्रभुपाद जी सीधा वहां पर ले जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे देखिए कई बार लोग जब प्रभुपाद की गीता पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये बार बार वही चीज क्यों कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र, चार नियम, आत्मा शरीर नहीं, ये सब बार बार हर एक तात्पर्य में यही सुनने को मिलता है। तो कई बार लोगों के मन में थोड़ी एक प्रकार से वो चिढ़ जाते हैं कि बार बार वही चीज। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे कोई व्यक्ति कोई पिक्चर देखने गया थिएटर में और वहां पर कोई सस्पेंस मूवी चालू है, हा? तो सस्पेंस मूवी जो होती है उसमें व्यक्ति जानना नहीं चाहता, बोलना मत स्टोरी। तो जो कोई व्यक्ति यदि स्टोरी बोल, मैं बताता हूं क्या इसमें आगे होने, नहीं चुप मुझे देखने दो। तो यदि कोई व्यक्ति उस प्रकार की पिक्चर देखने गया है और उसके बगल में कोई बैठा है और अभी मैं बता दूं आगे क्या करेगा ये, तो कितना आप चिढ़ेंगे उस व्यक्ति के ऊपर, तो भाग यहां से, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूरी पिक्चर देख रखी है और उसे पता है उसका सस्पेंस क्या है। तो वैसे ही प्रभुपाद जी ने इस पूरी सृष्टि का निष्कर्ष क्या है, सस्पेंस क्या है, देख रखा है और हमको बता दे रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हरे कृष्ण महामंत्र यही, तो वो सब पहले श्लोक से ही बता रहे हैं हमको, पिक्चर की शुरुआत से ही उसका सस्पेंस बता रहे हैं। परंतु लोग जो इंद्रिय भोग में रचे पचे हैं वो नहीं जानना चाहते कि सस्पेंस क्या है, नहीं मृत्यु के बारे में कुछ मत बताना भाई, मुझे पता है आने वाली मृत्यु, सस्पेंस में रखा है मैंने, और वो सस्पेंस में रहती है, और वो सस्पेंस ऐसा है कि हमको सस्पेंड कर देती है यहां से। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जब थोड़ा बहुत देखते थे कि लोग तोड़ मरोड़ के इसका अर्थ कैसे निकाल रहे हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरम रज, तुरंत प्रभुपाद जी कहते हैं माम मतलब कृष्ण, नहीं तो लोग क्या कहते हैं, माम का अर्थ है मैं, तो मैं जो आपको ये श्लोक सुना रहा हूं मेरी शरण में आओ। इसीलिए यहां पर इस श्लोक में जो कहा गया है कि वेदों का वास्तविक अर्थ जो है जब लोग वो नहीं समझते तो केवल यही जानते हैं कि वेदों में जो कर्मकांड का विभाग है वही वेद है, और कर्मकांड आजकल तो कर्मकांड भी पालन नहीं कर पा रहे, कलयुग की स्थिति ऐसी है। जैसे मैं आज बता रहा था कुछ भक्तों को कि अब जैसे ये धाम है नासिक, ऐसे कई धामों में अलग अलग प्रकार के कर्मकांड की विधि बनाई जाती है, लोग किसी का श्राद्ध बना रहे हैं, किसी का ये हवन चल रहा है, किसी का विवाह समारोह, किसी का अंत्येष्टि समारोह चल रहा है। तो आजकल ये सारे जो कर्मकांड की विधि है वो भी कोई जानता नहीं कि उसका निष्कर्ष क्या है। तो मैं बता रहा था कि एक हमारे भक्त हमको बता रहे थे कि यहां पर नासिक में ये जो लोग कर्मकांड की विधि करते हैं, कोई व्यक्ति मर गया, पिताजी मर गए तो उसका श्राद्ध के लिए, तो हुआ ऐसा कि सबसे पहले तो वो जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो लोग तो जानते नहीं, क्योंकि इतना जोर जोर से और इतना फास्ट उच्चारण करते हैं कि किसी को पता नहीं लगता पहले कौन सी भाषा बोल रहा है, और उसमें सब मंत्र जाते हैं। यदि किसी का विवाह चल रहा है तो उसमें अंत्येष्टि मंत्र भी चल रहा है उस व्यक्ति का, और ऐसा हुआ है व्यक्ति का विवाह चल रहा है और पंडित जी अंत्येष्टि मंत्र गा रहे हैं। तो एक घटना ऐसी हुई कि यहां नासिक में एक महिला आई अमेरिका से श्राद्ध कराने के लिए, और उस महिला ने कुछ 15-20 हजार रुपये दिए श्राद्ध कराने के लिए। तो जितनी रकम ज्यादा उतना समय ज्यादा बिताते हैं वो श्राद्ध करने में, यदि 100-200 तो तुरंत 15-20 मिनट में निपटा दो इसको, और यदि कोई व्यक्ति हजारों में दे रहा है तो फिर उतनी अवधि के चाहे जितने सारे मंत्र जहां कहां से जो भी मंत्र है, पिक्चर के गाने सब लगाकर बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो, 2 घंटे तक कुछ ना कुछ रेडियो चालू रहना चाहिए कि उनको लगे हाँ भाई बड़ा बड़ा श्राद्ध किया है, 2 घंटे का श्राद्ध किया। तो ये महिला अमेरिका से आई और श्राद्ध कराने के लिए, तो 15,000 दिया तो 2 घंटे तक चला, और ये 2 घंटे रोई जा रही है, विलाप कर रही है। तो लोगों को लगा भाई पिताजी लगता है कि बहुत कम उम्र में गुजर गए तो इसलिए इतना विलाप कर रही है। तो पूरा श्राद्ध होने के बाद जाके पूछा पता लगाने के लिए कि भाई कैसे आपके पिताजी मरे कि इतना विलाप कर रही है। पिताजी मेरे कोई पिताजी नहीं मरे, क्यों मर रहे मेरे पिताजी को? बोले श्राद्ध आप करा रहे हैं, इतना 2 घंटे का श्राद्ध किया, पिताजी नहीं मरे आपके? तो किसका श्राद्ध कराया? वो तो मेरा कुत्ता मरा था, और वो मरे हुए कुत्ते की अस्थियां का श्राद्ध हो रहा है वहां पे, और 2 घंटे का श्राद्ध हो गया, उसके बाद पता लगा भाई ये हमने कुत्ते का श्राद्ध कर दिया। तो यहां पर जो भगवान कर्मकांड के विषय में कह रहे हैं वो केवल कांड ही चल रहा है, जैसे हवाला कांड ये अलग अलग प्रकार के कांड है, सकली विषेर भांड चैतन्य चरितामृत में कहा गया, सब विष के प्याले हैं, क्योंकि जो वास्तविक निष्कर्ष है वेदों का वो नहीं बता रहे। इसीलिए वास्तविक निष्कर्ष है वेदों का, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये वास्तविक निष्कर्ष है कि जिसने इन वेदों की रचना की है उनके शरण में जाना, ये वास्तविक निष्कर्ष है। और इसीलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जैसे एक कूप, एक कुआं जो है वो आपको कुछ सुविधा प्रदान करेगा, परंतु यदि आप एक बड़े विशाल जलाशय में चले जाओ, विश्वनाथाचार्य ठाकुर इसकी टीका में लिखते हैं कि जैसे पहले गांवों में अलग अलग प्रकार के कुएं होते थे अलग अलग प्रयोजनों के लिए, पीने के पानी का एक कुआं होता था, कपड़े धोने का एक कुआं होता था, नहाने का एक कुआं होता था, तो अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग कुएं हुआ करते थे, परंतु एक बड़ा जलाशय या समुद्र या इस प्रकार की नदी सरोवर में चले जाओ तो सब कुछ वहां पर एक साथ हो सकता है। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिसने मुझको जान लिया है, जिसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, उसको और कोई ये छोटे मोटे जलाशय में जाने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान है वो सरोवर, वो बड़े जलाशय या एक समुद्र के समान, हे कृष्ण करुणा सिंधु, वो एक सिंधु के समान है। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बार बार लिखते हैं कि इस श्लोक का निष्कर्ष है भगवान की शरणागति, उस श्लोक का निष्कर्ष है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, इस श्लोक का निष्कर्ष है गुरु की शरण ग्रहण करना, क्योंकि उन्होंने ये पूरी मूवी देख ली है, उनको मालूम है कि इसका एंड क्या है, इसलिए वो पहले ही हमें बता रहे हैं। तो यही इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि पहले तो कलयुग में हम जन्मे हैं, और कलयुग में जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि कलयुग में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र, कि जन्म से हम शूद्र हैं, परंतु इस कलयुग में हम तो शूद्र से भी नीचे हैं। और मैं परसों उदाहरण दे रहा था कि अमेरिका में मैंने देखा कि लोग बड़े बड़े रईस वो अपने कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं रास्ते पर, और अपने कुत्ते का मल उठाते हैं थैली में। देखिए जिसको ये भंगी का कार्य है, भंगी एक सब कार्य करते हैं मल उठाने का कार्य, परंतु हम कह रहे थे कि भंगी भी भारत में कुत्ते का मल नहीं उठाएगा, तो शूद्र से भी नीचे जीवन हो रहा है कलयुग में लोगों का, कि कुत्ते का मल उठा रहे हैं और उसमें ही जीवन जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे इनको देखकर, बिकॉज यू आर सर्विंग डॉग यू कांट सर्व गॉड। तो इसलिए कलयुग में हमारी स्थिति ऐसी है कि यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, न तो आयु है न बुद्धि है, और इसके ऊपर भाग्य तो मंद है ही, कोई भाग्य नहीं हमारा कि हम आध्यात्मिक पथ पर चल भी पाए या खड़े भी हो पाए, परंतु चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी की कृपा इतनी है कि हमें दलदल से, इस भौतिक संसार के दलदल से ऐसे उठाकर सीधे ऐसे पथ पर रख दिया है जो पथ सीधा गोलोक वृंदावन ले जाएगा हमें, परंतु केवल हमें इस पथ पर रहना है। यदि इस पथ पर रहेंगे, इस पथ से विपथ नहीं होंगे, तो ये पथ हमें ले जाएगा भगवत धाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की।